भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् तत्तेनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक् माताजी ते आपकी अनुकंपां दया की सुसमीक्षमाण आशा रखते हुए भुंजान सहन करते हुए एव निश्चय ही आत्मकृतम अपने से किया गया विपाकम कर्मफल हृद हृदय वाक वाणी वपुर्भीर तथा शरीर से विदधन अर्पित करते हुए नमः नमस्कार ते आपको जीवेत जीवित रहता है यह जो मुक्तिपदे मुक्तिपद के लिए सह वह दायभाक वास्तविक उत्तराधिकारी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपके अहितुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। श्रील श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बतलाते हैं कि जिस प्रकार वैद्य पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्तियों के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाता है उसे स्वतः भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसमीक्षमाण शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों के कष्टकारक फलों को भोगते हुए भी श्री भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद्गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं, अतः श्री भगवान कभी कभी अपने भक्त को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा लग सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है, इसमें वो ईश्वर के बिना भोग करना चाहते हैं। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म हुआ होता है। यद्यपि भक्त श्री भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्वरूप दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें उस जगत के मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति रह जाती है। इसलिए श्री भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला यह दुख कर्म फल नहीं होता, प्रत्युत यह श्री भगवान की विशिष्ट कृपा होती है जो उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवत जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी श्री भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और वह मन वचन तथा कर्म से श्री भगवान को आदर देता है तथा नमस्कार करता है। श्री भगवान की का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए श्री भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, जैसा कि यहाँ दायभाग शब्द से सूचित होता है। जिस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के समीप नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा ही प्रतीत हो, किंतु यह श्री भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। तो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का ये बड़ा सिद्धांत पोषक श्लोक हम सभी के भक्ति के जीवन के प्रगति के लिए आधार स्तंभ है। इस सहनशीलता को अपनाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सहनशीलता के तीन स्तर श्रीमद् भागवत में और गीता में वर्णन है। पहला स्तर है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आपके समस्याओं का मूल कारण है कि आप इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों के संपर्क में हर बार केवल सुख की अपेक्षा करते हो। ऐसा आपके मन में हमेशा यही विचार होता है कि अगर मेरे नेत्र किसी रूप के साथ संपर्क करें तो उस संपर्क से परिणाम केवल सुख ही हो, कान का अगर किसी ध्वनि के साथ संपर्क हो तो उस संपर्क से केवल सुख की ही उत्पत्ति हो, जिह्वा का अगर स्वाद के साथ संपर्क हो तो उससे सुख ही उत्पादन हो। तो इस प्रकार प्रकृति के और संपूर्ण सृष्टि के रचना के विपरीत हमारी मिथ्या पूर्ण अभिलाषा और आशा ही हमारे निराशा के कारण बनती है। इसलिए हर संपर्क में और हर परस्पर आदान प्रदान में जब हमारी पंचेंद्रियां पंच विषयों के संपर्क में आती हैं तो 50% दुख की संभावना है, लेकिन हम लोग 100% सुख ही मिलेगा ऐसा सोच के चलते हैं और ऐसा विचार करके हम लोग इस भौतिक जगत रूपी जो जुआशाला में जुआरी की तरह हम लोग विचार करते हैं कि बस यहाँ दांव लगाओ सुखी निकलेगा, और उसके कारण जब दिवाला निकलता है तो फिर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो कहते जब पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि 50% तो दुख की संभावना है ही, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तो इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के साथ भी संबंध स्थापित करो तो पहले ही 50% मार खाएंगे सोच के ही चलना है। तो ऐसा विचार करके अगर अपन अपना हर संबंध को स्थापित करें, चाहे वो इंद्रिय हो, विषय हो, व्यक्ति हो, तो ऐसे कष्ट की अपेक्षा करते हुए जब हम अपनी जीवन यात्रा करें तो फिर उस मिथ्या विहीन और सत्य आधारित अभिलाषा के कारण ही हमारे 50% चिंता दूर हो जाएगी। अगर पुलिस थाना में कोई पुलिस इंस्पेक्टर बैठा है और उसका फोन बजेगा तो वो फोन क्या कोई शुभ समाचार की सूचना देगा क्या? अगर पुलिस स्टेशन में बैठा है तो थोड़ी कोई फोन करेगा लड्डू भेजूं क्या मैं। अगर कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन में बैठा है तो जब फोन बजेगा मतलब क्या, कहां क्या लगी है? अब फायर ब्रिगेड चलाने वाला आदमी अपना फायर स्टेशन में बैठा है और फोन बजेगा और कोई बोलता है यार आग लगी और गुस्सा होकर चिल्लाने लगा, तो मतलब वो पता नहीं उसको कि कहाँ बैठा है। जिस कुर्सी पर बैठा है वहाँ हर फोन जो हर घंटी बजेगी वो केवल अग्नि की ही सूचना देगी। तो इसलिए संसार दावा नल लिढ़लो का, तो यहाँ पर जो भी घंटी बजेगी अग्नि की ही सूची मिलेगी। तो उसको भूलकर हम लोग भोग की कामना लग करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो, लेकिन फिर भी इतना भी उत्पीड़ित मत हो जाओ, इतना भी दुखी मत हो जाओ, क्योंकि आगमा अपायनो सबसे आशावादी शब्द इस श्लोक में क्या है कि ये अनित्य है। अगर आप बड़े दुखी हो आज तो समझो कि आपको इस दुख को बनाए रखने की भी औकात नहीं है, औकात है ही नहीं। अगर बोलो नहीं मैं तो दुखी ही रहूंगा तो भगवान चैलेंज देते वो भी तू नहीं कर पाएगा। जैसे ही प्रसाद का प्लेट आएगा भूल जाएगा, मुस्कुराने लगेगा, खुश हो जाएगा और लोग बोलेंगे क्या हो गया तेरे संकल्प का, तू तो बिल्कुल पीड़ा में रहने वाला था। बोले नहीं थोड़ा ब्रेक लिया हूं। तो इसलिए ये बद्ध जीव ना तो निरंतर स्थायी रूप से सुखी रह सकता है ना स्थायी रूप से दुखी रह सकता है। आगमा आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व, इसलिए प्रतीक्षा करते रहो कि कब बारिश बंद होगी, अब कब धूप निकलेगा। तो बराबर जैसे जुलाई के सीजन में हम लोग यहाँ पर लीला देखते हैं, छतरी खोलो सूरज, छतरी बंद करो कहीं रख कर चलने लगो बरसात। आगमा आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत, तो इसलिए सुख और दुख की अनित्यता को स्मरण करते हुए चलना ये सहनशीलता का प्रथम पड़ाव है। फिर दूसरा आगे कहते हैं कि उस स्तर से ऊपर उठकर जब कोई भक्ति करने लगता है, पहले तो वो सर पर मार खा रहा है, उसको समझ में नहीं आता कि अचानक बिजली गई आई, ये क्या चल रहा है, तो पंखे को और बल्ब को देखकर गाली देता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं। फिर वो बिजली डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन हो जाता है, जब बिजली के डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने लगता है तब वो समझता है कि ये बंद क्यों हो रहा है कि नहीं। तो फिर वो यही देखता है कि जब बंद हो तो वो पब्लिक के सामने ना आए, नहीं तो गाली खाए। लेकिन उसके समझ में आने लगता है कि ये बंद और चालू क्यों हो रहा है, तो फिर उसकी धारणा बदल जाती है, उसकी प्रेरणा बदल जाती है, उसका रवैया दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ समझने लगता है। वैसे ही पहले जो हम लोग अनपढ़ थे, अज्ञान में थे, तो समझ में नहीं आता था ये दुख सुख ये क्यों चल रहा है। अब भागवत पढ़ लिया, तीसरा स्कंद पढ़ लिया, संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसी हुई बलराम शक्ति प्रभु से समझ गए, तो फिर उसके बाद क्या बचा? उसके बाद समझना ही है कि ये रचना के पीछे ही भगवान ने ऐसा विचार किया है कि तुमको यहाँ पचाना है, और तब उसको समझकर दृष्टिकोण एक दूसरे स्तर पर चला जाता है। फिर हम भगवान के पार्टी में हो गए, उनके पार्टी में हो गए तो उन्होंने जो जो फिर लीला की है उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर दूसरे स्तर पर ये श्लोक आता है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, दृष्टि आ जाती है, इक्षमानो, इक्षमानो अर्थात देखने की ताकत, देखने की शक्ति, दृष्टि का जो बोध हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए इक्षमानो अर्थात हम देख पाते हैं कि ये जो पीड़ा मेरे जीवन में अभी आई है, इसका दोष मुझे उस मुरली वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपना बजा रहा है, अपने में मस्त है कि नहीं। करोड़पति को कुछ थोड़ी पड़ा है कि झोपड़ी के अंदर अगर चूहा घुस गया और रात की नींद खराब कर दी झोपड़ी में सोने वाले की, तो करोड़पति का उससे क्या लेना देना, वो अपने धुन में है। तो इसलिए जो हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पीड़ा अनुभव करते हैं, उसके लिए भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं। तो एक क्षमानो ये देख पाते हैं कि इसके पीछे हमारे अपने कर्म उत्तरदायी हैं, तो इसलिए एक क्षमानो अर्थात हम देख पाते हैं, समीक क्षमानो कि हाँ इसके पीछे हमारे कर्म, हमने ऐसे कर्म किए इसके कारण हमें ये प्राप्त हुआ, किसी ने मेरी आलोचना की, क्यों, हो सकता है कि कुछ दिन पहले मैंने उसकी आलोचना की होगी और वो इस बात को धारणा को मन में लेके घूम रहा था, और फिर समय पर उसने मुझे ये जो दे दिया, तो उसको कहते हैं एक क्षमा, समीक क्षमानो अर्थात समझ पाना कि इस प्रक्रिया के पीछे मेरा भी अपना एक निजी योगदान है। लेकिन सुसमीक क्षमानो का अर्थ है कि केवल इस जीवन काल में नहीं, पूर्व जीवन में भी मैंने कुछ किए होंगे जिसका परिणाम इस जीवन में मुझे प्राप्त हो रहा है। अर्थात भली भांति पूर्णतः भगवान के संपूर्ण रचना के अंदर कैसे न्याय निर्धारित किया जाता है, और इस न्याय की संपूर्ण प्रक्रिया में मेरा अपना निजी उत्तरदायित्व भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरी योगदान से ये सब आरंभ होता है, इस बात को स्वीकार करना और भगवान के ऊपर अपने कोप कटाक्ष को दूर कर लेना और विचार करना कि हाँ ये तो केवल कृपालु हैं और जितना मुझे पिटना चाहिए उसके हिसाब से बहुत छोटे से प्रमाण में हमें दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनुकंपाम तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो, अर्थात क्लेश और दुख अनुभव करते हुए उसे भगवान की कृपा के रूप में देखना कि भगवान ने कृपा की है, क्योंकि वो सब दृष्टिकोण के ऊपर होता है, सब कुछ दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है कि जिस दृष्टिकोण से आप देखोगे और जिस परिस्थिति में आप उसे देखोगे, उस परिस्थिति के बदलने पर और दृष्टिकोण के बदलने पर आपका अनुभव बदल जाता है। इसलिए जैसे एक बार राधानाथ महाराज हम लोग को यात्रा लेके गए थे नासिक में, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 1998 की बात है, और नवंबर में उस समय हम लोग वृंदावन यात्रा गए थे, वृंदावन यात्रा से लौट के आए, और लौटने के पश्चात परमहंस प्रभु उस समय नासिक में प्रीचिंग करते थे, तो महाराज को मिलने ऐसे ही गए दूसरे काम से, तो महाराज बातें करते करते बोले, अरे अच्छा नासिक में प्रीचिंग वीचिंग कैसा चल रहा है, बोले अच्छा चल रहा है। तो महाराज ने कहा नासिक में यात्रा होगी तो कैसा होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा कब करना है महाराज, अगले साल करें, महाराज कहा नहीं अगले हफ्ते करेंगे। तो घबरा गए, बोले यार ये क्या बोल रहे हैं। तो पहले अपनी यात्रा ऐसी होती थी, महाराज बैठे हैं, मूड आया, बोले चलो क्या बैठे बैठे यहाँ क्या करना है, घूम के आते हैं यात्रा। तो एक हफ्ते के अंदर यात्रा अरेंज किया उन्होंने जबरदस्त। बाकी यात्रा में मुझे इतना सब याद नहीं, लेकिन पहला दिन जब पहुंचे थे एकादशी था, और एकादशी का जो उन्होंने प्रसाद अरेंज किया था वो आज तक का इस्कॉन का सबसे बेस्ट एकादशी प्रसाद था। उसका डिटेल मुझे याद नहीं है लेकिन उस यात्रा में फिर महाराज हम लोग सबको लेके गए तपोवन में और गोदावरी के वहाँ पर कथा सुनाने। तो उस समय जो है गोदावरी का पानी जो है सूख गया था, थोड़ा कम हो जाता है वो सीजन के हिसाब से। तो महाराज सबको लेते चलते चले चलते चले और सीधा जाके बीच में एक जो पत्थर था चट्टान उसके ऊपर बैठ गए और हम लोग सब भी फिर बैठ गए। और सुबह के 10 बजे थे तो ठीक है, लेकिन वो 2-3 घंटा जब लेक्चर चला तो ऊपर सूर्य नारायण की कृपा जो हुई, सब लोग के पसीने छूट गए और परेशान करके दूर दूर तक कहीं पर आश्रय लेने के लिए भी स्थान नहीं, और महाराज बीच में कशाला कंटिन्यू भी बोले जा रहे हैं। तो इतनी गर्मी कि पूछो मत। तो लगभग उसके 7-8 साल के बाद फिर हम लोग IVS यात्रा में गए थे। तो IVS यात्रा में गए थे तो हम लोग IVS के सब बच्चों को लेके अपन वही तपोवन में गए, लेकिन उस समय कथाकार मैं था और बलदेव प्रभु ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उन्होंने एक पास में एक शेड था सिंपल सा, वो शेड के अंदर सबको बिठाया और उसमें बैठे, लेकिन गर्मी काफ़ी थी, दोपहर का 1-2 बजा था और पंखा उनका था नहीं वो शेड के अंदर। तो सब लोग हाँ हाँ हू हू कर रहे थे और बोल रहे थे बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। तो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के उनको ये वाला स्टोरी सुनाया कि 10 साल पहले जब हम आए थे तो हमको यहाँ पर बिठाया था, वो देख रहे हो वो पत्थर वहाँ पे, हम लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ चलें क्या? वो वहाँ देखे, फिर शेड को देखे, बोले ये बहुत एयर कंडीशन लग रहा है। तो जैसे ये परिस्थिति बदल जाती है तो उसके हिसाब से जब अपेक्षा बदल जाती है तो अनुभव भी बदल जाता है। तो इसलिए इस श्लोक में यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा दृष्टिकोण जिस तरह बदलेगा, उस दृष्टिकोण के बदलते हुए पड़ाव पर हमारा अनुभव आधारित है। Our experience is expectation dependent। तो इसलिए यह श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जिसके आधार पर, जिस इस सिद्धांत के नौका पर सवार होकर हम इस साधना भक्ति के बवंडर को पार कर पाएंगे, अन्यथा इस साधना भक्ति के चलते हुए उतार चढ़ाव में अगर हमारे पास इस श्लोक के दृष्टिकोण के नौका का सहारा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, तो हम उस बवंडर में निराश होकर डूब जाएंगे। तो इसलिए बड़ा ही आशावादी और सिद्धांत पोषक श्लोक है, इस पर चिंतन करना बड़ा आवश्यक है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। तो जैसे ही व्यक्ति को लगने लगता है, क्योंकि अधिकांश पीड़ा का कारण होता है कि हमें लगता है कोई और कारण है, मेरे पीड़ा के पीछे कौन है, और सब जगह हाथ घुमाने के बाद जब उंगली ऐसे आए कि मैं ही हूं जिम्मेदार उत्तरदायी इसका, तो अपने आप 80% पीड़ा वहीं दूर हो जाती है। तो फिर तुरंत हम समझने लगते हैं कि हाँ हाँ ऐसा होता है। तो इसलिए 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि मान लो कोई आपको तमाचा मारे तो फिर आपको पीड़ा होती है, लेकिन आप अपनी ही जिह्वा को अगर काट लेते हो गलती से, दांत के बीच अगर जिह्वा कट जाती है, तो फिर किसको गाली दोगे, कौन उत्तरदायी है उसका? तो इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा को काट लेता है गलती से, चुपचाप कोने में बैठकर वो उस पीड़ा को सहन करके उसे भूल जाता है, आगे चलता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जितना भी कष्ट, चुनौती, परेशानी आए, इसी भाव के साथ उसको हम देखें, आत्मकृतम, ये तो मैंने ही अपनी जिह्वा को काट ली है। विपाकम कृत्वा वपुर्भीर विदधान नमस्ते। तो इसलिए जो पीड़ा आई है, इसमें मुझे भगवान को या भक्त लोगों को दोष नहीं देना चाहिए, इसका उत्तरदायित्व स्वयं लेकर मेरी भक्ति में, क्योंकि अगर मैं दोष दूं तो दोष के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे भक्ति करने की क्षमता और उत्साह क्षीण होने लगती है, क्योंकि भक्ति के लिए आधार स्तंभ श्रद्धा है, और श्रद्धा का विकास के बदले अगर श्रद्धा का लोप हो तो श्रद्धा के लोप के साथ भक्ति का भी लोप हो जाता है, भक्ति करने के उत्साह का लोप हो जाता है। इसलिए आत्मकृतम, हाँ ये मेरे ही द्वारा प्रेरित ये पीड़ा है, केवल ये विचार करने मात्र से 80% समस्या निकल जाती है। ये श्लोक मान लो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर वॉल्व है, ये सादा निकाल देगा। आत्मकृतम हृद्वाक वपुर्भीर विदधान नमस्ते। फिर उसी उत्साह के साथ हम भगवान और वैष्णव संघ में सेवा करते चले जाएं। जीवेत, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का जीवन जिएगा तब फिर मुक्ति पदे, उसको मैं क्या पुरस्कार देता हूँ, फिर मैं समझता हूँ कि हाँ ये व्यक्ति प्रामाणिक सेवक बन चुका है। केवल अपने नाम के आगे दास शब्द लगाकर केवल उसके लिए उपमा नहीं है, वो वास्तव में दास भाव को इसने आंतरिकरण कर लिया, उसके निचोड़ को पी गया है। और क्योंकि वो इस भौतिक जगत के पीड़ाओं को सहन करते हुए अपने दासत्व को दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं भगवत धाम के अंदर दासत्व देने का रिस्क ले सकता हूं, अन्यथा वो गोलोक के अंदर आकर उत्पात मचाएगा, स्ट्राइक करेगा, बाकी सेवकों को परेशान करेगा, उनको ललकारेगा। तो इसलिए पूरी तरह उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद ही मैं भगवत धाम के द्वार ऐसे व्यक्ति के लिए खोलता हूं। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो केवल गोलोक जाना है, गोलोक जाना है, भगवत धाम जाना है, केवल बोलते रहने से क्या होगा, उसके लिए तैयारी भी होनी चाहिए, उस प्रकार का रवैया हमारे मन के अंदर होना चाहिए, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तब जाकर ये स्वप्न साकार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाक। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति भगवत धाम का उत्तराधिकारी बन जाता है, मैं उसे भगवत धाम में प्रवेश कराता हूँ, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो हर परिस्थिति में मेरी कृपा को ही देखता है, वो हर पीड़ा को मेरे ही द्वारा दिया गया चुंबन देखता है, अर्थात वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो गया, इसलिए वो भगवत धाम आने के लिए तैयार है। हरिदास को हे मिथ्या अभिमान कोरी, तोमार गंभीर हृदय बुझिते न पारी। तो हम पिछले हफ्ते सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के बीच के वार्तालाप का वर्णन किए, तो आगे हम देखते हैं कि महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में प्रेमालाप को देखकर हरिदास ठाकुर वहाँ पर अचंभित हो जाते हैं और विस्मयजनक शब्दों से कहते हैं, प्रभु मिथ्या अभिमान के कारण हम लोग आपके गंभीर हृदय और उसके विचार और योजनाओं को समझ नहीं पाते। तोमार गंभीर हृदय बुझीते न पारी, उसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आप किस भक्त के लिए किस समय किस प्रकार की योजना बनाए हो ये आप ही समझ सकते हो। कौन कौन कार्य तुमी कर कौन द्वारे तुमी न जानाइल के ह जानीते न पारे। प्रभो आपने किस भक्त के लिए कौन सी सेवा चुनी है, कौन कौन कार्य तुमी कर कौन द्वारे, किस भक्त के द्वारा आप कौन सी सेवा फलित कराओगे, अगर तुमी न जानाए ले, अगर आप इसे लोगों के समक्ष विज्ञापन नहीं करोगे, प्रस्तुत नहीं करोगे, तो फिर जानीते न पारे, हम नहीं समझ सकते। अर्थात भगवान का हर भक्त के लिए एक स्वाभाविक वात्सल्य और स्नेह से प्रेरित एक योजना है, और उस योजना को हम अपने क्षुद्र बुद्धि से समय से पूर्व नहीं समझ सकते। ये हमारे प्रयत्न के ऊपर आधारित नहीं, भगवान के विशेष कृपा के ऊपर आधारित है। और यहाँ सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जैसे भगवान के नित्य पार्षद कह रहे हैं कि आपकी अपने प्रेममयी सबसे स्नेहिल भक्तों के प्रति जो अनुराग का प्रस्ताव है वो कोई नहीं समझ सकता, तो फिर हम अपनी सीमित बुद्धि से उसको कैसे समझ सकते हैं। तुमी न जानाइले केह जानीते न पारे, आप ही इन सभी बातों को समझा सकते। प्रभुपाद जब अपने अंतिम दिनों में वृंदावन में थे कृष्ण बलराम मंदिर में, और कृष्ण बलराम मंदिर का तभी उद्घाटन हुआ था, और प्रभुपाद जी उस तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने चेयर पर, रॉकिंग चेयर था प्रभुपाद जी का, तो आपने देखा होगा कृष्ण बलराम मंदिर के उस आंगन में एक तमाल का पेड़ है, उसी के नीचे प्रभुपाद जी बैठे थे, तमाल कृष्ण महाराज उनके साथ थे, और आरती चल रही थी कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर जी की, और प्रभुपाद ने कहा, ये 1977 की बात है, और प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण बलराम मंदिर पूरे इस्कॉन के भक्तों के लिए हमने उद्घाटन कर दिया, लेकिन कभी हमने इस तरह संकल्पना नहीं की थी कि हम यहाँ पर एक मंदिर बांधेंगे। और तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, हाँ श्रील प्रभुपाद, ये कृष्ण बलराम की इच्छा थी इसलिए ये फलित हो पाया। प्रभुपाद ने कहा कि 1969 में जब उन्होंने रुक्मिणी द्वारकाधीश की स्थापना की वाटसिका एवेन्यू लॉस एंजलस में, तो लॉस एंजलस को प्रभुपाद जी ने पश्चिमी देश के हेडक्वार्टर्स के रूप में घोषित कर दिया, वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन। और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में सूचना दे दी, सबको संदेश दे दिया कि विश्व के सभी जितने भक्त लोग हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे, लॉस एंजलस में आकर ट्रेनिंग लेंगे, और मैं यहाँ पर्सनली बैठकर सबको जो है ट्रेनिंग दूंगा, चाहे वो पुजारी हो, मैनेजर हो, जो भी हो, मैं अभी बहुत ज़्यादा भ्रमण नहीं करूँगा, यहीं बैठकर ट्रांसलेशन भी करूँगा, ट्रेनिंग भी दूंगा। इस तरह प्रभुपाद का प्लान था। तो वास्तव में 1969 में प्रभुपाद जी का भारत में आने का और इस्कॉन इंडिया को स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था, ये बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं इस बात को। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी 1966 में पूरा एक चार्ट लेके बैठे और उस पर लिखते गए 67 कनाडा, 68 जापान, 1969-70 लंदन, 71 इंडिया, ऐसा करके प्रभुपाद जी ने एक पूरा बनाया था प्लान और फिर उसके हिसाब से वो करते चले गए, ऐसा नहीं था। लंदन में भी प्रभुपाद जी ने केवल श्याम सुंदर प्रभु इन लोगों को बोला और केवल एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, प्रीच करना हो तो बीटल्स को प्रीच करके देखो, सीधा इसको काउंसिली बनाओ, जॉर्ज हैरिसन। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे भेज दिया उनको। और श्याम सुंदर प्रभु का भी जाना कुछ गारंटी नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास श्याम सुंदर प्रभु आए 1969 में और बोले कि मेरे को तो जेल में जाना होगा। प्रभुपाद ने कहा जेल में क्यों जाना? प्रभुपाद ने पहला, अरे कोई चिंता की बात नहीं, कृष्णा भी जेल में जन्म लिए। तो श्याम सुंदर प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने मुझे निष्कासित नहीं कर दिया कि अरे जेल में जाएगा, मुजरिम बन गया, अपराधी बन गया, निकल जाओ। उनको लगा प्रभुपाद शायद ऐसे बोलेंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, कृष्ण भी जेल में जन्म लिए थे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे सार्वभौम प्रभु ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे 93 में, जब अपना 92 दिसंबर 6 तारीख को जब बाबरी मस्जिद का आक्रमण हुआ था, तो उसके तुरंत बाद बहुत सारे उसके पहले कार सेवक भर भर के जा रहे थे ट्रेन में। तो उस समय मुझे याद है कोई ट्रेन में रिजर्वेशन विजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि लाखों की संख्या में सब ट्रेन में घुस रहे थे और कोई भी पूछता तो बोलते क्या कार सेवा, हम लोग जा रहे हैं मंदिर बनाने जा रहे हैं अयोध्या में। तो वो ऐसी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन लेके बैठे थे और एसी कंपार्टमेंट में बैठे थे और उसमें कई लोग घुस गए और उनको हटाने बोले, हटाने लगे और सब बैठने लगे। तो फिर वो तुरंत टीसी को बुलाया, अरे यार इनको रोको, ये क्या घुस गए हम लोग यहाँ पे। तो टिकट कलेक्टर आया तो वो लोगों को पूछने लगा, एक रिजर्वेशन के बिना कैसे घुस गए? बोले हम लोग राम जन्मभूमि जा रहे हैं। तो टीटी ने कहा अगर तुम उतरोगे नहीं तुमको कृष्ण जन्मभूमि भेज देंगे। तो कृष्ण जन्मभूमि प्रसिद्ध है, इसके लिए जेल। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को उत्साह बढ़ाया, बोले कृष्ण का जन्म भी तो जेल में हुआ था, क्या है उसमें? फिर प्रभुपाद जी ने ऐसे ही पूछ लिया, व्हाई आर यू गोइंग टू जेल, क्या किया तुमने अपराध? उसने कहा प्रभुपाद जी आई वॉज डीलिंग विथ ड्रग्स। प्रभुपाद ने कहा मी टू, मैं भी ड्रग्स का व्यापार कर रहा था, प्रयाग फार्मेसी चला रहा था। तो सब लोग बड़े हंसने लगे और पूरा माहौल जो था टेंशन का वो दूर हो गया। तो श्याम सुंदर प्रभु फिर बोले अभी क्या करूं मैं? प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, जाओ जेल में, माला करते रहो, कीर्तन करते रहो, थोड़े दिन में छूट जाओगे। श्याम सुंदर प्रभु ने कहा 5 साल की सजा है, 69 मतलब 74 तक अंदर रहने वाले हैं। प्रभुपाद ने कहा सोचो मत ज्यादा, कीर्तन करो, जप करो, जेल में जो पैदा हुआ है वही जेल से छोड़ेगा। ऐसा नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं। तो कृष्ण की इच्छा होगी छूट जाओगे, प्रभुपाद ने इतना बोल दिया, वो चले गए। और 6 महीने के अंदर जेल का वार्डन आके उनका कटघरा खोल के बोलता है आपको रिहा कर रहे हैं। श्याम सुंदर प्रभु बोले लेकिन क्यों? तो उसने कहा मुझे क्या पता, ऑर्डर आया है तुम्हारे नाम पे और तुमको छोड़ रहे हैं। तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो गया ये। तो वास्तव में सोचो अगर श्याम सुंदर प्रभु अंदर होते 5 साल तो ना ये लंदन जा पाते, ना भारत आ पाते, ना क्रॉस मैदान हो पाता और न राधानाथ स्वामी आ पाते और आप बैठ के यहाँ कथा नहीं सुन रहे होते और मैं तो कभी डेफिनेटली नहीं बोल रहा था। तो एक जो इंसिडेंट यहाँ से वहाँ हो गया, एक जेल का जो वर्डिक्ट 5 साल से जो 5 महीने हो गया, उससे सोचो हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। तो ये सब कौन करवा रहा है? तो इसीलिए उस समय एक तो श्याम सुंदर प्रभु एक्टिव हो गए। फिर श्याम सुंदर प्रभु का मैं रिसेंट बुक पढ़ रहा था कि प्रभुपाद और वो जब क्रॉस मैदान के बाद, मार्च में हुआ क्रॉस मैदान, मार्च अप्रैल में, उसके बाद रशिया के लिए जाने की बात की प्रभुपाद ने उनको मिलने के लिए, प्रोफेसर कोटोस्की को मिलने के लिए गए वो। तो फिर मैं वो वाला चैप्टर खोला तो प्रभुपाद जी बॉम्बे एयरपोर्ट से प्रोफेसर कोटोस्की को मिलने के लिए जो रशिया के लिए प्रभुपाद यहाँ से निकले वो डेट था June 20, 1971, वही दिन मेरा जन्म हुआ। तो वही डेट पर प्रभुपाद गए रशिया, और अगले दिन प्रभुपाद ने तुरंत लेटर भी भेज दिया बीरनगर में अपने गुरु भाई को ललित प्रसाद, जो कि भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के दूसरे पुत्र थे, बीआरसी के विषय में किसी मैनुस्क्रिप्ट मिशन और ये सब, मतलब मॉस्को लैंड हुआ अगले दिन लेटर उनका रेडी। तो मतलब इतने एक्टिव थे प्रभुपाद जी। तो 1969-70 में प्रभुपाद जी ने इनको तो भेज दिया लंदन वगैरह, लेकिन प्रभुपाद का अभी भी प्लान नहीं था लॉस एंजलस से हिलने का। इंडिया से तो वो परेशान होकर निकले थे कि यहाँ पर तो कभी कोई डिवोटी नहीं बनेगा, यहाँ कभी मेरे को यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक डिवोटी बैठ के, अमेरिकन डिवोटी 1975 में जुहू में हिंदी का बुक पढ़ रहा था, वो ऐसा भाषा सीखने वाला बुक आता है ना, इंग्लिश से हिंदी सीखो, तो हिंदी सीख रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा क्या कर रहे हो, बोले हिंदी सीख रहा हूँ, अमेरिकन डिवोटी। प्रभुपाद बोला तुम क्यों पढ़ रहे हो हिंदी, तुमको क्या सीखने की जरूरत है। बोले अरे मेरे को इंडिया में प्रीच करना है, तो ये लोग हिंदी में मैं बोलूँगा तो फिर लोग बने। प्रभुपाद ने है यहाँ कोई डिवोटी नहीं बनेगा ज़्यादा, कोई फायदा नहीं, कोट है पूरा प्रभुपाद जी का वो कन्वर्सेशन, हियर दे विल नेवर बिकम डिवोटी। मतलब इतना प्रभुपाद का वो माथा गर्म हो गया था, वो देवानंद का फिल्म लेके, ये लेके, वो लेके। 1974 में आप फोलियो में जाओ तो पूरा डॉक्यूमेंट है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया इस्कॉन इज CIA, तो उसका फिर रेस्पॉन्स दिया गोपाल कृष्ण महाराज ने, उस समय वो गृहस्थ थे, और उसका पूरा रेस्पॉन्स फिर वहाँ पर प्रेजेंट किया गया, और पूरा पार्लियामेंट के मिनट्स में वो है, इंडियन पार्लियामेंट के, लोकसभा के, कि इस्कॉन पूरा CIA एजेंट है करके क्वेश्चन उठाया किसी ने। तो वास्तव में उस समय प्रभुपाद जी का इंडिया आने का कोई प्लान नहीं था 69-70 में, लेकिन अचानक वहाँ पर कुछ घटनाएं होने लगी। तो प्रभुपाद जी का एक बुक के ऊपर फाउंडर आचार्य नाम हटा दिया गया, बुक था टाइटल नीचे प्रभु AC भक्ति वेदांत स्वामी, प्रभुपाद भी नहीं और फाउंडर आचार्य भी नहीं। फिर प्रभुपाद को कुछ भक्तों ने कहा हमने आपको कई दिन पहले से पत्र लिखा है, आपने रिप्लाई नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा मुझे मिला ही नहीं पत्र। फिर जांच पड़ताल की, मालूम पड़ा कुछ लोग प्रभुपाद जी का पत्र को जो है उसको रोक रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि प्रभुपाद को ये पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने रथ यात्रा में रथ के ऊपर बैठने के लिए मांग की, मैं रथ में बैठना चाहता हूँ, तो भक्तों ने कहा नहीं हमको आदेश है कि आपको नहीं बैठाना है। 66 में इस्कॉन स्टार्ट हुआ, 4 साल के अंदर फाउंडर आचार्य के विरोध में बगावत आरंभ हो गई थी, ये इस्कॉन का इतिहास है। तो फिर प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बुलाए और बोले हमको यहाँ से निकलना होगा, ये लॉस एंजलस जो कि मेरा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के रूप में मैंने सोचा था, यहीं पर कई भक्त लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं और मेरे पोजीशन को कम करना चाहते हैं और इस्कॉन को टेक ओवर करना चाहते हैं। तो ये 1970 का इतिहास है और ये लीलामृत में आपको मिल जाएगा, थ्रेट अगेंस्ट इस्कॉन चैप्टर का नाम है। तो वास्तव में हुआ क्या था कि कुछ भक्त लोग जो इंडिया आए थे वो प्रभुपाद के कुछ दूसरे गॉड ब्रदर्स के संपर्क में आकर धीरे धीरे उनसे कुछ सुन सुन कर, वो ट्रांसमिट हो कर कुछ लोग इफेक्ट हो गए थे, और इस तरह की धारणा उनमें आ गई कि ये कोई खास स्पेशल नहीं है, इनके जैसे हजारों भारत में घूम रहे हैं हम जैसे गौड़ी मठ में, तो इसलिए इतना भी अधिक सम्मान देकर प्रभुपाद और ये और वो बोलने की जरूरत नहीं, ये सब सरस्वती ठाकुर का ही बड़ा परिवार है, इसमें स्पेशल रिस्पेक्ट की आवश्यकता नहीं करके। और कई जो यंग अमेरिकन उस समय लीडर्स भक्त लोग थे वो अफेक्ट हो गए थे, और तब प्रभुपाद के पास चारा नहीं था। तो प्रभुपाद ने तब भी ये नहीं सोचा इंडिया,
प्रभुपाद को फिर तमाल कृष्ण महाराज ने कहा लेट अस गो टू न्यूयॉर्क. प्रभुपाद ने कहा नो इन्फ्लुएंस इज देयर ऑल्सो. लेट अस गो टू यूरोप, बोले नहीं देयर ऑल्सो इट इज इन्फ्लुएंस इज देयर. इंडिया, बोले नो दैट इज वेयर एवरीथिंग इज स्टार्टिंग. सो वेयर वी शुड गो सर? प्रभुपाद सर विल गो टू जापान. तो फिर प्रभुपाद वहां से जापान गए केवल इसलिए क्योंकि वो इस परिस्थिति से दूर भागना चाहते थे और संदेश देना चाहते थे कि मैं इसके विरोध में हूं. तो उस समय जब प्रभुपाद जी जब जापान में गए और फिर जापान में फिर जाने के बाद फिर हांगकांग और फिर वहां से उनके पास कहीं ना कहीं जाना था, फिर वो इंडिया आए. तो इस तरह प्रभुपाद जी इंडिया आने के बाद सोचे कि अभी ये सब समस्या को शांत होने में समय है, तब इंडिया में बैठकर अपन कुछ करते हैं. फिर प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला चलो मायापुर में लैंड ढूंढो, फिर वृंदावन में भी लैंड ढूंढते हैं और बॉम्बे में भी लैंड ढूंढते हैं. तुरंत तीनों जगह लैंड ढूंढने का प्रयास आरंभ कर दिया प्रभुपाद जी ने. तो ये सब तमाल कृष्ण महाराज के साथ वो चर्चा कर रहे थे और स्मरण कर रहे थे 1977 में कि वास्तव में इंडिया में आने का प्लान ही नहीं था. और उस समय प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा जब बगावत हुई, और बगावत मतलब जो इन्फ्लुएंस हो गए थे, इफेक्ट हो गए थे, है कि नहीं, तो वो तीन चार लोग जो इफेक्ट हो गए थे जिनके प्रेरणा से फिर बाकी लोग इफेक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रहा था. तो प्रभुपाद बोले उस समय मैं इतना दुखी हो गया, इतना हताश हो गया कि 25 वर्ष की तैयारी के बाद मैं 1966 में अमेरिका में आके इस्कॉन की स्थापना की सरस्वती ठाकुर की इच्छा के अनुसार, और अब मेरे इच्छा के अनुसार इतना सुंदर मंदिर लॉस एंजलस में तैयार होकर रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा पूजा हो रही है जैसे होनी चाहिए, और मैंने पूरी योजना बना ली थी कैसे अलग अलग ग्रुप्स में लोग आएंगे, यहां पर ट्रेन होंगे, ऐसा सोच ही रहा था, और ये सब आरंभ हो गया तो मैं रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा आपकी क्या इच्छा है, आप ही को मैंने प्रकट किया यहां पर निवेदन करके, और आपको संतुष्ट करने के लिए इतना सब कुछ भक्त लोग यहां पर तैयार हुए, लेकिन ये ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, आपकी योजना समझना बड़ा असंभव है. इसलिए उन्होंने कहा रुक्मिणी द्वारकाधीश से, ये तो स्पष्ट है कि मैं यहां नहीं रह सकता, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं यहीं रहूं, कहीं नहीं जाऊं, यहीं रहकर पूरे इस्कॉन का संचालन करूं और सारा प्रशिक्षण यहीं से कराऊं हर प्रकार का. और मेरे उनकी आयु प्रभुपाद की जो थी उसमें इट मेड सेंस, 73 के हो गए थे उस समय. बोले कहाँ भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, वहाँ BBT भी था, DT वर्शिप भी था, सारे डिवोटीज भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया था. तो प्रभुपाद के दृष्टिकोण से पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन था. लेकिन प्रभुपाद जैसे स्तर के शुद्ध भक्त, सेनापति भक्त, वो भी भगवान के हृदय के अंदर क्या इच्छा है, तुमार गंभीर हृदय बुझिते न पारी, कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जानाइले केह जानिते न पारे. कौन कौन व्यक्ति के लिए कौन कौन सी सेवा भगवान छुपा के रखे हैं भेंट के रूप में, और कब वो भेंट देंगे और कब उसको प्रकाशित करेंगे, ये बड़े से बड़ा भक्त भी नहीं समझ सकता, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद प्रार्थना किए रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने रोते हुए 1970 में, और प्रभुपाद अब राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम के सामने रो रहे थे, उस समय निराशा में रो रहे थे, अब कृतज्ञता से रो रहे हैं कि आपने इतनी सब कुछ योजना बना के रखी थी, उसको कोई समझ नहीं पाता, इस्कॉन इंडिया स्टार्ट भी नहीं हो पाता था. तो इसलिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस समय जो हुआ बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इतने कम समय में जो कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानने वाले लोग कृष्ण के बारे में जानकर, जिनसे कृष्ण के बारे में सुना, उनके विषय में कुछ विपरीत धारणा रखकर कुछ बगावत भी करने लगे, ये भी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस विपरीत परिस्थिति को, कृष्ण भक्ति को एक वैश्विक रूप देने में किस तरह कृष्ण का, कृष्ण के इस परिस्थिति को एक भेंट स्वरूप स्वीकार किया और प्रभुपाद जी ने उसे सकारात्मक रूप दिया और उसके कारण फिर इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया में फैला, अफ्रीका में फैला, जो है यूरोप में तो लंदन और यूरोप में तभी स्टार्ट हुआ। तो वास्तव में 66 और 70 के बीच में इस्कॉन केवल अमेरिका तक ही सीमित था, बट दिस इंसिडेंट वॉज टर्निंग पॉइंट। और कई बार जो बड़ा अनुराग होता है, आसक्ति होती है, ये धारणा कि ये लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कभी कभी उस धारणा को भगवान को शक्तिशाली रूप से तोड़ना पड़ता है और तब व्यक्ति अपने उस स्वप्न से उठता है कि अरे ऐसा नहीं, यहां पर भी समस्या है, तो चलो सबके प्रति प्रेम प्रकट करें। और उस समय अगर यह स्नेहिल संबंध चलता चला जाता, हो सकता है महाप्रभु जैसे जगन्नाथपुरी में बने रहे, वैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में ही बने रहते। और जिस प्रकार इतिहास आज हम देख रहे हैं, शायद वैसा न होता। लेकिन उस समय वो बगावत का अनुभव प्रभुपाद जी के लिए बड़ा ही कष्टदायक था, लेकिन उसके आधार पर विश्व के सामने महाप्रभु का मिशन एक अलग रूप धारण कर लिया। तो इसलिए जीवन के हर सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थिति के पीछे भगवान का अपना हस्ताक्षेप रहता है और इसको हम समझ नहीं सकते। फिर प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को बोले, वास्तव में रुक्मिणी द्वारकाधीश ने मुझे, मैं चाह रहा था मुझे क्यों भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, और रुक्मिणी द्वारकाधीश तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन वास्तव में मुझे कह रहे थे, नहीं तुम निकलो यहां से, निकलोगे नहीं तब तक कृष्ण भक्ति सब जगह फैलेगी नहीं, निकलो और फिर भारत में जाकर वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित करो। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश का स्मरण करते हुए कृष्ण बलराम के सामने खड़े होकर प्रभुपाद करते, रुक्मिणी द्वारकाधीश ने मुझे वहां से भगाया जिससे वो इनको प्रकट कर सके। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जैसे भक्त के स्तर पर भी तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना सहनशीलता आवश्यक होती है, और उस सहनशीलता को वो एक दूसरा रूप देकर भगवत भक्ति का वो प्रचार करते हैं। तो इसलिए मात्रा स्पर्शास्त कौंतेय तत्तेनुकंपा, और तीसरा स्तर है जो कुंती महारानी ने प्रकट किया, विपद संतु ताह शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कष्ट और दुख सहन नहीं करना है और चाहिए, सेकंड सर्व वंस मोर और दीजिए जिससे कि हम आपका ही स्मरण कर सकें। तो ये बिल्कुल सहनशीलता की एक अद्वितीय भगवत प्रेम की पराकाष्ठा का स्तर है ये, दैट आई जस्ट डोंट टॉलरेट, आई डिमांड मोर डिस्ट्रेस। तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति का पराभव, शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा। तो इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय डिफाइन्स द फर्स्ट लेवल ऑफ टॉलरेंस, तत्तेनुकंपाम इज द सेकेंड लेवल, एंड विपदा संतुता शश्वत इज द हाइएस्ट लेवल, जहाँ पे हम विचार करते हैं कि जब कष्टदायक परिस्थिति आए हम भगवान का स्मरण करें और ये भगवान का स्मरण के कारण जो मलहम लगता है उस पीड़ा में, उसका आनंद ही कुछ और है। इस प्रकार यहाँ पर हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, एतादृश तुमी इहारे कोरियाच अंगीकार, एत सौभाग्य इहा न है कहार। कहते हैं कि सनातन गोस्वामी का कितना बड़ा सौभाग्य है प्रभु कि वो अपना आत्महत्या करने को चला। उसको लगा कि अब मेरे शरीर में रोग हो गया, पीड़ा हो गई, अब मेरा कोई भविष्य नहीं, अब तो सब कुछ समाप्त, अब मैं न सेवा कर सकता हूँ, न भगवान के मंदिर में जा सकता हूँ, न महाप्रभु को आलिंगन कर सकता हूँ। तो वास्तव में अस्पृश्य हो गया, समाज के लिए कलंक बन गया। ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा ये शरीर सेवा करने योग्य नहीं बचा। इसलिए सेवा ही नहीं तो जीवन क्या, इसलिए जीवन समाप्त करो। अर्थात इस प्रकार का विचार सनातन गोस्वामी जैसे भक्त के मन में प्रकट हो गया। तो इसलिए चाहे भक्त कितना भी प्रगतिशील क्यों न हो और चाहे कितना भी शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, हर भक्त अपने जीवन के इस भक्ति की यात्रा में कभी उत्साहमयी और कभी हतोत्साहित अनुभव करेगा। और दोनों परिस्थितियों में भक्तों की आवश्यकता है। उत्साहपूर्वक अगर हमारा गर्व बढ़ता चला जाए तो वो भक्त लोग उसको ठंडा करेंगे, और हतोत्साहित होकर अगर हम गिर जाएं और लगे कि हम तो उठ ही नहीं सकते, तो भक्त लोग फिर उठाएंगे। तो उठाने के लिए और बिठाने के लिए, दोनों के लिए वैष्णव संघ की आवश्यकता है। और इसलिए यहाँ पर ठाकुर हरिदास सनातन गोस्वामी और महाप्रभु के इस प्रेममयी आदान प्रदान को वर्णन कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो आज दोपहर को लगभग आज 10-10:30 बजे से भक्ति चारू महाराज का तिरुभाव चौपाटी के जो ट्रांसमिशन होता है उस पे आएगा। तो सबसे निवेदन है कि सभी लोग उसमें भाग लेने का प्रयास करें। 11 बजे से ऑफरिंग स्टार्ट होंगे भक्ति चारू महाराज के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ताय गौर प्रेमानंदी।